તારીખ 15/3/1994 શ્રી મદ્રાજ ચંદ્રપત્રાંક 449 અને 548 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 65
क्या करते हैं कि तरस्तो लोगों की मान्यता करवाना समाजों में प्रत्यक्ष तत्परता समाजों में मिले तो लोगों को आपस में सत्संग करना चाहिए और जो भी सांसारिक प्रवृत्ति होती है उसमें विरक्त पड़ा रस को कुछ कम करके प्रवृत्ति करना प्रवृत्ति कितनी भी हो ज्यादा हो कम हो इसका कोई लेवल नहीं है उसका कोई परिमाण नहीं है स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन रस अवश्य कम कर लें इसलिए रस कम करना आवश्यक है कि हमारे आत्म कल्याण के दिशा में वृहत बाधक होता है इसलिए संबंध रूप से प्रवृत्ति संसार की जाए तो आत्म कल्याण के विषय में हमारी समझ यथार्थ रूप से काम करने लग सके इसलिए प्रवृत्ति में विरक्तता रखना और सत्पुरुष के चरित्र और मार्गानुसार जीव के वचन उसका परिचय करना आखिर में लिखा है परिचय करना मार्गानुसार जीव के कैसे वचन कि जिस वचन का उद्देश्य आत्मा को मुख्य करने का है आत्म कल्याण को मुख्य करने का उद्देश्य है ऐसे वचनों का परिचय करना सत्पुरुष के चरित्रों का परिचय करना ये कथा मेरे का विषय लिया क्यों कि भरत आदि चक्रवर्ती से लेकर रामचंद्र जी और पांडवों को लेकर के सभी महापुरुष थे अपने अपने उदय अनुसार सांसारिक अवस्था में थे फिर भी बड़े बड़े राजपाट होने पर भी और उतना लंबा चौड़ा परिग्रह होने पर भी तो आत्म कल्याण करते थे कर सकते थे तो उसका विचार करना कि कैसे किया हम लोगों ने ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने राजपाट होते हुए भी आत्म कल्याण नहीं किया ऐसा नहीं है सामान्यतया लोग त्याग को महत्व देते हैं और जिसको परिग्रह होता है उसको महत्व नहीं देते हैं लेकिन ये सब सत्पुरुष ऐसे थे जिनके चरित्र हम पुराण में पढ़ते हैं तो ऐसे थे कि जिनसे जिनको बहुत बड़े लंबा परिग्रह था फिर भी आत्म कल्याण कैसे किया एक समझ लायक थी इसलिए संयोग को हटाने का प्रयत्न नहीं करके उसी संयोग के बीच में रह करके किस प्रकार से आत्म कल्याण का साधन साधा जाता है उसी को समझना है और उसी को अनुसरण करना है तो ये सब था परिग्रह होना एक बात है परिग्रह का महत्व होना एक दूसरी बात होती है तो उन लोगों को परिग्रह था लेकिन परिग्रह का महत्व का रस नहीं था तो वो परिग्रह बाधा नहीं डालता है आत्म कल्याण में बाधा किसके आती है कि परिग्रह प्रत्येक का जो महत्व रस है अपनत्व होता है और तीव्र रस से होता है तो वो आत्म कल्याण में बाधा होता है परिग्रह तो अपनी अपनी जगह पे है ये कोई आत्मा में आते नहीं नुकसान करने के लिए आत्मा में आते नहीं लेकिन उस परिग्रह प्रति एकत्व भाव महत्व भाव अपनत्व भाव जो है ये स्वयं में होता है तो उसको बाधा करना तो आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होने देता अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि होने में आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होने देता। वैसे तो कोई दरिद्र होता है लेकिन परिवार का बहुत रस होता है, उसको पुण्य योग है नहीं है तो नहीं मिलता है, फिर भी रस तो ज्यादा हो सकता है। इसलिए परिग्रह होवे और परिग्रह का रस भी होवे, ऐसा भी बन सकता है। परिग्रह नहीं होवे फिर भी परिग्रह का रस हो सकता है, परिग्रह होवे और नहीं होवे और परिग्रह का रस नहीं भी होवे, और परिग्रह होवे तो भी परिग्रह का रस नहीं भी होवे। ऐसे चारों पड़कों से इस बात को समझ लेना चाहिए। तो ये परिग्रह होना नहीं होना ये हमारे हाथ की बात होती तो हम कोई कसर रहने देते नहीं, हमारे कोई कॉम्प्लिकेटर नहीं होते, लेकिन ये बात तो किसी के हाथ की नहीं होती। सबके ऊपर सबको ऊपर वाला दिखता है, मेरे से ये वो आगे है, वो आगे है, वो आगे है, हमको इसके आगे जाना है, हमको इसके आगे जाना है, लेकिन ये कोई हाथ की बाजी नहीं होती। इसलिए हमें परिणाम में क्या करना है नहीं देखना कि परिणाम में विरक्त पड़ा करके ऐसे सत्पुरुष के चरित्र का परिचय करना, सत्पुरुष के चरित्र का परिचय करना इसका यही मतलब है कि सत्पुरुष गृहस्थ अवस्था में परिग्रह अवस्था में होने पर भी वो आत्मकल्याण करते थे। खुद उपालुभ की बात है, मुंबई में इसका बहुत बड़ा कारोबार है, तीन चार ऑफिस है, और उस जमाने में भी वो फॉरेन का काम करते थे, फ्रांस का अपना पेरिस के साथ उसका धंधा था, फ्रांस में चाइना में इसका बिजनेस था, रंगून में तो था ही बहुत जगह पे, फिर भी वो आत्मकल्याण करते थे। उस परिस्थिति में भी चिट्ठी बम्बई से लिखी है, बम्बई रहने का पहले अपना वतन नहीं था, वो नेटिव प्लेस नहीं था, वो तो कारोबार के हिसाब से धंधा व्यवसाय के हिसाब से रहते थे। कैसे किया ये हमें सीखने की समझने की जो कोई चीज है तो वही है। इस संदर्भ में कहते हैं कि सत्पुरुष के चरित्र का परिचय करना, और सदग्रंथों का भी परिचय करना कि जिन ग्रंथों में आत्मा का स्वरूप बताने का आत्मकल्याण का उद्देश्य वचन मुख्य रूप से होता है। यही सभी साधन में मुख्य साधन ऐसा श्री सत्पुरुष का समागम गिनना, ये सब साधन की गिनती करने में सत्पुरुष का प्रत्यक्ष समागम है, यही मुख्य साधन है, यही उत्तम साधन है, दूसरे इससे उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है ऐसा लक्ष्य में। यहाँ तो कल ऐसा देव हुआ था, आगे आत्मा को स्वीकार करते हैं। हमारे समागम का अंतराय जान करके चित्त में प्रणाम का अवकाश देना योग्य नहीं, हमारा प्रत्यक्ष समागम नहीं है तो फिर आत्मकल्याण के कार्य में प्रमाद नहीं करना। प्रमाद माने क्या? ऐ प्रमाद को समझ ले तो प्रमाद समझ में आ जाएगा कि हमें शीघ्राति शीघ्र आत्मकल्याण करना है। क्यों? कि आगे हमने आत्मकल्याण किया नहीं, इसलिए हमें इन मार्ग से अनजाने रहे, हमारी रस और वृत्ति भी आत्मकल्याण में नहीं लग रही है, ऐसी कोई अवस्था में हम चल रहे हैं और इस संसार में मनुष्य आयु का अल्पत्व बहुत है, बहुत कम आयु लेकर के हम आते हैं, तो 50 साल में कोई लंबा आयु नहीं है और उसमें भी बहुभाग को हमारा आयु संसारिक प्रवृत्ति में समय व्यतीत करने में लग जाता है और अनिश्चितता से ग्रसित है, तो वे बात करी थी आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब किसी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा आत्मकल्याण हम शीघ्रता से कर ले उसी को ये प्रमाद कहते हैं, ऐसे अभिप्राय को ऐसी वृत्ति को ए प्रमाद कहने में, पर इस प्रकार की वृत्ति का अभाव को प्रमाद कहने में आता है। फिर से आहिस्ते आहिस्ते करेंगे या अभी तो हमारी उम्र छोटी है, बुढ़ापा आएगा जब करेंगे, तो निश्चित तो नहीं आने का, कोई गारंटी तो दे सकते नहीं है, इसलिए अभी नहीं करना या कभी भी कर लेंगे ऐसे भरोसों में रह करके आत्मकल्याण की रुचि का अभाव होना उसी को प्रमाद कहते हैं। तो हमारे संघ में तो आपको ये लगता है कि आत्मकल्याण कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा संघ छूट गया तो आत्मकल्याण आपकी वृत्ति में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, भले ही हमारा संयोग नहीं है तो भी ऐसा प्रभाव होना योग्य नहीं। आपस में मुमुक्षु भाइयों का समागम अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, मैंने नियमित रूप से एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि नियमित रूप से आपस में सत्संग बना रहे हैं, ये बहुत कम जगह देखने में आता है। तो जब जब इधर आते हैं तो पूछ लेते हैं कि आप लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो आपस में ही आत्मकल्याण का विषय चलता है कि नहीं चलता है, क्या क्या चलता है, कब कब मिलते हो, हफ्ते में कितने दिन मिलते हो या रोजाना मिलते हो, कोई व्यवस्था बिठाई है कि नहीं बिठाई है। जब हम हमारे संसार के अनेक प्रकार की अनुकूलता और सुविधा की व्यवस्था अच्छी तरह बिठाते हैं तो हमारे आत्मकल्याण की व्यवस्था क्यों नहीं बिठाते हैं, कि इस दिशा में हम एक कदम भी आगे बढ़े तो दूसरा कदम बढ़ने का अवकाश हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? क्या ये हमारा आयु पूरा हुए उतना ही हमारा जीवन है कि इसके आगे भी हमारा कोई जीवन होने वाला रहने वाला है, इसका विचार अगर हम नहीं करते तो इसका परिणाम अच्छा नहीं है। उसका परिणाम अच्छा नहीं है क्या, कि जीव दुर्गति में चला जाता है, संपत्ति नहीं होती है। इसलिए मुमुक्षु भाइयों को समागम अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। निवृत्ति के क्षेत्र का प्रथम न्यून होने देना योग्य नहीं, निवृत्ति के क्षेत्र में जाकर के सत्संग करना, इसलिए वो कहते हैं कि प्रवृत्ति क्षेत्र में और निवृत्ति के क्षेत्र के सत्संग में बहुत अंतर पड़ता है। यहाँ अनेक प्रकार की उपाधि साथ में लेकर के हम बैठते हैं इस बात को विचार करने के लिए, जबकि निवृत्ति क्षेत्र में सब प्रकार की टेलीफोन लाइन कट जाती है और एक ही विषय पर हम कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं, उधर ध्यान हमारा जो विचार है वो डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कहीं विचार चला जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के काम जो है पेंडिंग है हमारे सामने, तो उनके विचार आए बिना रहेगा ये विक्षेप हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए साल में एक दफे, दो दफे, तीन दफे कम से कम निवृत्ति क्षेत्र में जाना चाहिए। और एक रस वाले, एक निष्ठा वाले, एक अभिप्राय वाले साथ में बैठ करके अपना आत्म कल्याण कैसे हो उसका विचार करें, उसका प्रयोग करें, और इस दिशा में हम हमारा विकास करें। ये करने योग्य है, ये कर्तव्य है। निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग कम होने देना योग्य नहीं है, कम नहीं करना, बढ़ाना, बढ़ सके इतना बढ़ाना, लेकिन कम करना नहीं। और कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं, ये थोड़ा कंडीशन हार्ड है, कठिन है। प्रवृत्ति करना योग्य नहीं ऐसा नहीं, कामना पूर्वक प्रवृत्ति करना योग्य नहीं, वो कैसे हो सकती है? प्रवृत्ति भी करना, ऑफिस में भी जाना, पर कामना नहीं रखना, वो कैसे बन सकता है? बन सकता है, वो खुद ही करते थे। कैसे? इसका भी एक तरीका है कि आप धनी मिल जाओ, मैनेजर हो जाओ, क्या इस गद्दी में से, इस कारोबार में हम हमारे खर्च उठाते हैं, यही हमारी सैलरी है, ये हमारा तनख्वाह है, बस मैनेजर होना। धनी होने में बहुत अंतर है, मैनेजर होने में बहुत अंतर है। आपको ईश्वर ने इस गद्दी का मैनेजर बनाया है, मालिक तो वो है, लेकिन खुद मालिक बन जाता है तो उपाधि का पार नहीं रहेगा। रमेश टेक्निक है काम करने की, आत्मकल्याण करने की खूबी होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ऑफिस बन जाइए, दिल्ली भी जाओ, कलकत्ता भी जाओ, मुंबई भी जाओ, कहीं भी जाओ, और आपको जहां जाना हो फॉरेन भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं, जा सकते हैं, किंतु मैनेजर होके जाओ, क्या धनी होके मत जाओ। देखो कितनी मजा है, आप इतने अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, इतना टेंशन कम हो जाएगा। क्यों? कि जो होगा वो तो प्रारब्ध योग अनुसार ही होगा, जो नसीब में है, मुकद्दर में है, वही आएगा, जाएगा तो वो सही जाएगा, आएगा तो ऐसे। लेकिन जो धनी होता है उसको आता है तो भी उपाधि बढ़ती है, जाता है तो भी उपाधि बढ़ती है, और मैनेजर को लेना देना नहीं रहता, तो तनख्वाह तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो पुण्य लेके आए, तनख्वाह नहीं मिलेगा वो बात होने वाली नहीं। फिर भी निरालंब निरपेक्ष वृत्ति से काम करना सबसे बढ़िया है। एक बार नहीं मिलेगा तो भी देखा जाएगा कि हमारे परिणाम कैसे रहते हैं, हमारे भाव कैसे रहते हैं, लेकिन वो आगे की स्टेज की बात है। प्रारंभिक स्टेज में तो उतना ही फिर पार्व कर ले तो बहुत प्रकार का वो टेंशन से है उसमें बच जाएगा। और जितनी उपाधि ज्यादा इतना कर्म बंधन भी ज्यादा, जितनी उपाधि ज्यादा करेंगे उतना कर्म भी ज्यादा बंधेगा और इसका दंड भुगतना भी पड़ेगा। ये भी साथ में रखने का है। जैसे हम खाते हैं बहुत रस से खाएंगे तो असाधन भोगे बिना ये कर्म छूटने वाला नहीं है, ऐसा तभी का बंद होगा क्या। खाना खाते हैं दो तरह से खाया जाता है, एक तो स्वाद लेने के रस से और एक निरसता से भी। तो स्वाद लेने में तो आनंद आता है, मजा आती है, लेकिन होता है क्या कि एक नुकसान भी होता है। तो नुकसान है तो वेदना की पीड़ा भोगे बिना वो छूटने वाला नहीं। अब हमें पता हो गया ज्ञान हुआ कि ऐसा नुकसान भी होता है तो जान नुकसान होगा। जीव का स्वभाव ऐसा है कि वहां नुकसान में आगे बढ़ता नहीं, उसकी वृत्ति है वो पीछे हट करती है। नुकसान मालूम पड़ते ही यहां से पीछे हटने लगती है, निरस्ता ही जाएगी। निरस्ता करनी नहीं पड़ेगी, निरस्ता आ ही जाएगी। तो ज्ञान ऐसा काम करता है, ज्ञान है तो निरस्ता इस संपूर्ण को ले आ रहा है सहज रूप से। इसलिए कामना पूर्वक प्रवृत्ति करनी योग्य नहीं, ऐसा विचार करके जितना बने उतना अप्रवृत्तता को और परस्परता समागम को और निवृत्ति क्षेत्र को और प्रवृत्ति के उदासीनता को आराधन करना, कितना बार चार बात लिया। इसलिए जितना हो सके अपनी पूरी शक्ति से शीघ्रता से काम होए, इस अभिप्राय से इस वृत्ति से मुमुक्षुओं को आपस में समागम में आना, कभी निवृत्ति क्षेत्र में भी जाकर के सत्संग करना, और जो उदयाधीन प्रवृत्ति है पूर्वकर्म के कारण से जो प्रवृत्ति है उसमें निरस्त रूप से प्रवृत्ति करने का परिणाम रखना। अब अपने विषय में कहते हैं, स्वयं के विषय का उल्लेख करते हैं। ये कृपाल देव की सरलता भी समझो या उपदेश देने के एक विशिष्ट शैली कार्य पद्धति समझो कि अपने जीवन से वो बोध देते थे। जैसे वो अपना जीवन बनाते थे वो बताते जाते थे और मनुष्य को समझाते कि देखो हम तो ऐसा करते हैं, आप भी तो ऐसा करिए, ऐसा लिखते हैं। हम तो जो प्रवृत्ति उदय में है क्या अपने विषय में लिख रहे हैं कि हम जो प्रवृत्ति व्यवसाय की कर रहे हैं मुंबई में बैठे बैठे, उसको हम चाहते नहीं है लेकिन हमारे नसीब में तो करनी पड़ती है। इसके लिए दूसरे दरवाजे से निकल जाए तो भी यह न छूट सके ऐसी है क्या। मेन गेट से तो हमें कोई जाने नहीं देंगे क्या था, तो प्रगति में मुख्य थे, इनके ग्रुप ऑफ पार्टनर्स थे, लेकिन वो वर्किंग पार्टनर में उनके खुद के डिसीशन से डिस्क्रिप्शनरी पावर उनके थे और चतुर थे, व्यवसाय में भी बहुत चतुर थे। ऐसा नहीं है कि जिसको अक्ल नहीं है वो धर्म के क्षेत्र में चला जाता है, ऐसी बात नहीं है कि जिसको बुद्धि नहीं हो व्यवसाय नहीं कर सकते हो, संसार की चतुराई नहीं हो तो भगत बन जाए, माला फेर ले मंदिर में चले जाए, ऐसी बात नहीं है। बहुत चतुर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि थी, बड़े बड़े लोग इनके पीछे थे। तो कहते हैं कि हमारी परिस्थिति वो बन गई है व्यवसाय में आने को, 20 साल की उम्र में उन्होंने व्यवसाय ज्वाइन किया, ये 26 साल की उम्र में वो चिट्ठी लिख रहे हैं, 6 साल 5 साल पूरा हो गया है, 17 साल चल रहा है, 26 वर्ष का आजकल तो लड़का बोला जाता है, आदमी नहीं बोला जाता, आजकल 26 साल की उम्र को लड़का बोला जाता है, लेकिन वो उतने बुद्धिमान थे कि बड़े बड़े लोगों ने उनको पार्टनर्स में लिया था, 20 साल की उम्र से लिया था, सामने से ऑफर करके लिया था, उन्होंने कोशिश नहीं की थी, उनको ऑफर मिले थे हमारे साथ बैठे, हम इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, आपको तो आपका जो दिमाग है वही लग फिर भी छोड़ सके ऐसी परिस्थिति में नहीं थे। बहुत व्यवसाय लंबा चौड़ा भूल हो गया था, अगर वो निकल जाए तो समय को बहुत नुकसान हो जाए, सभी पार्टनर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो सीधे दरवाजे से तो हमको कोई निकलने नहीं देंगे, लेकिन पिछले दरवाजे से हम भगना चाहें तो भी भग सके नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। देखो ऐसी परिस्थिति भोगने योग्य है, ये हमारा पूर्व कर्म है, ये पूर्व कर्म की हमारी देन है, हमको चुकाना पड़ेगा, तो भोगने योग्य है, इसलिए इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं। क्यों प्रवृत्ति करते हैं कि हमको ये कर्ज किया है, इस कर्ज को लेकर के आज चुकाने को बैठे हैं, बिना चुकाए भग जाना ये हमारी प्रमाणिकता नहीं है, प्रवृत्ति करते हैं तो इसमें प्रमाणिकता है, तथापि भीतर में आत्मा की अव्याबाध स्थिति में जैसे का तैसा स्वास्थ्य है। क्या बोले, क्या लिखे, ये प्रवृत्ति करते हुए भी हमारी जो आत्मा का स्वास्थ्य, आत्मा में रहना, स्वस्थ स्व में स्व में रहना, हमारी आत्मिक तंदुरुस्ती बराबर बनी रही है, प्रवृत्ति करने से हमारे परिणाम गिरे नहीं है, आत्मकल्याण के मार्ग में हम बराबर चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं है, शरीर का नहीं, आत्मा का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा है। देखो क्या कैसा पुरुषार्थ होगा, तथापि अव्याबाध स्थिति हमारे परिणाम को कोई बाधा पहुंचा नहीं, अव्याबाध स्थिति है, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते, उसमें जो स्वास्थ्य है, जो तंदुरुस्ती है, जो ताकत है वो वैसे की वैसी है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। 26 साल की उम्र में क्या लिखते हैं, आत्म स्वास्थ्य जैसा है वैसा है, कितनी भी प्रवृत्ति है फिर भी हमारी स्थिति में उसकी बाधा आती नहीं है। क्यों नहीं आती होगी, कैसे नहीं आती होगी, एक विचारणीय विषय है, विचार करने योग्य विषय है, कि जहां अपनत्व होकर के तीव्र रस लगता है वहां परिणाम में बहुत ही आकुलता, अकुलाहट, टेंशन पैदा हो जाता है, लेकिन वो एक मैनेजर बन के काम करते थे, पार्टनर होते हुए भी मैनेजर बन के काम करते थे, हमने पढ़ा है वाणिया में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पढ़ा, रेवाशंकर जगजीवन की कंपनी मैनेजर रायचंद्र रणदेव भाई मेहता का मैनेजर करके लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो हमारे साथ हमारे यहाँ खरीदी करने को आते हैं दोनों काम करते हैं, और हमारे थ्रू जो माल बेचते हैं ऐसे हमारे क्लाइंट जो है इनके साथ हम किस तरह से काम करते हैं, हमारी नीति क्या है, हमारी नीति क्या है, उनके बाद हमें थोड़ा खुद की दस्तखत में लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमारी कार्य पद्धति है। और उसको कार्य पद्धति को देखे तो किसी को आकर्षण हुए बिना रह नहीं, ऐसी बात है। हमको ताजुब इस बात का कि वो थे तो पार्टनर, और लिखा था मैनेजर, भागीदार होते हुए भी लिखा था मैनेजर, और वास्तव में वो मैनेजर बन के काम करते थे। इसलिए जो आत्मा का स्वास्थ्य है वो ऐसा का वैसा बना रहा। आज दिन यह आत्मा पत्ता लिखते हैं, अखिल का पत्ता लिखते हैं, पत्ता है पोषण का। यह आप सभी को सर्व जिज्ञासु भाइयों को बार बार विचार करने के लिए लिखा है। ये जो हमने चिट्ठी लिखी है ये सभी जिज्ञासुओं को मनुष्यों को विचार करने के लिए लिखे हैं। हमारा चित्त ऐसा उदय हुआ वाला कभी बढ़ता है, हमारा आत्मा हमें और जगह बरतता है, और हमारी दुकानदारी की प्रवृत्ति और ऐसे चिट्ठी लिखने की प्रवृत्ति में हमारा चित्त बरतता है, हमारा आत्मा ज्ञान निष्ठा किसको कहते हैं। जो तन्मय हो करके अपनत्व करके जो भी उदय की प्रवृत्ति करते हैं वहां आत्मा बरतता है, और अपनत्व छोड़ करके जो प्रवृत्ति होती है तो आत्मा आत्मा में बरतता है, और मन और चित्त बाह्य प्रवृत्ति में बरतता है। उस बाह्य प्रवृत्ति में प्रवर्तन करने वाला मन उससे भिन्न अपना आत्मा बरतता है, ये कहने का होता है, भिन्न रहता है यार, उसमें आत्मत्व नहीं होता, अपनत्व नहीं होता। ज्ञान भाव में आत्मभाव में रह करके आत्मा आत्मा में रहता है, और चित्त दूसरा काम कर लेता है, करने दो, हमें इसकी भी उपाधि करनी नहीं है। एक न्याय ऐसा है ज्ञान दशा का कि ज्ञानी को राग करना तो नहीं है, लेकिन होता है उसको मिटाना भी नहीं है, क्योंकि पर्याय दृष्टि चली गई। क्या ज्ञानी को राग करना तो नहीं लेकिन मिटाना भी नहीं, ऐसी स्थिति में राग मिट जाता है, मिटाना नहीं पड़ता, क्योंकि भिन्न रह गए, उसको सपोर्ट नहीं मिला, निराधार हो गया। साधक अवस्था में गृहस्थ अवस्था है, गृहस्थ के राग होंगे, गृहस्थ के लायक जो भी राग है होता रहेगा, लेकिन वो निराधार होकर के होता रहेगा, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं वर्तता है। राग में राग वर्तता है, राग में आत्मा नहीं वर्तता है, तो निराधार हो गया, क्योंकि उसमें पर्याय बुद्धि नहीं होने से अहम बुद्धि नहीं होती। थोड़ी ज्ञानी की ज्ञानी की दशा है, लौकिक है, और बहुत योग्यता से समझ में आए ऐसे, क्योंकि समझ में आने से पहचान होती है, और पहचान होने में प्रतिबंधक भाव होते हैं, मात्र पहचान मनुष्य को भी नहीं होती है। तो प्रकरण सुबह लेके बात करो, आज वो बात समय हो गया इसलिए नहीं चली है, तो सुबह के स्वाध्याय में तो विषय एजेंडा कर बाबा मान लेंगे कि ज्ञानी मिलने पर भी पहचान क्यों नहीं होती है, और नहीं होती तो ऐसे कौन से परिणाम की विद्यमानता है जिस कारण से पहचान नहीं होती है, इसकी चर्चा कर सकता है। तो यहाँ तो उतना ही निर्देश है कि हमारा चित्त ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है, आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से, उदय करने से नहीं लिया, उदय होने से वह उदय का अनुसार लिखा गया है, जो भी विकल्प आया शायद लिखा गया है, कोई प्री प्लानिंग करके हमने चिट्ठी लिख दे चिट्ठी लिखने में भी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, और उपदेश देने में भी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई भी बात सामने आएगी अपने अनुभव ज्ञान के अनुसार वो बात बताएंगे, लेकिन हम पहले पढ़ ले, उसका पूरी स्टडी कर ले, फिर क्या क्या बात बोलना है उसका प्लानिंग भी कर ले प्रोफेसर की तरह, कि क्या सिखाना है, क्या उपदेश देना है, फिर हम स्वाध्याय करा दे, ऐसा ज्ञानी करते हैं। कहीं से भी बात आती है, जिनको अनुभव ज्ञान मौजूद है उनको ये चिंता नहीं होती कि हम इसमें से क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये बात उनको नहीं होती। ये जो सब्जेक्ट है उसको उसका अपना कमांड है, मास्टरी आती है कि कहीं से भी देख, समाज धर्मसभा में तो क्या होता है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, कोई कहाँ से प्रश्न निकालेगा, कोई कहाँ से प्रश्न निकालेगा, प्रश्न निकालने का तो बहुत से कॉर्नर होते हैं, किस कॉर्नर से किस एंगल से कौन सा प्रश्न आएगा उसका कोई एंटिसिपेशन होता है क्या? हाँ नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड आता है, लेकिन जिसका सब्जेक्ट पर कमांड है तो कोई भी प्रश्न अपना अनुभव ज्ञान से तो सॉल्व कर दे सकते हैं, लेकिन जिसको ऐसा नहीं है तो उसको फिर गड़बड़ करनी पड़ती है, पूछने वाले पूछते कहीं और उत्तर देते कुछ और दे देते, ऐसा बन जाता है। आज अनुक्रम से ऐसा उदय होने से उदय अनुसार लिखा है, हम सत्संग की तथा निवृत्ति की कामना रखते हैं, इतनी प्रवृत्ति होने पर भी और इतना आत्मज्ञान होने पर भी और इतना समर्थ ज्ञानी होने पर भी हम सत्संग की कामना करते हैं और निवृत्ति की भी कामना करते हैं रखते हैं, तो फिर आप सबों को ऐसी कामना रखने चाहिए, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब हमारे जैसे को भी सत्संग चाहिए, निवृत्ति चाहिए, तो आप सबों को भी तो चाहिए ही चाहिए, आपको तो बहुत काम बाकी है। हम भी अल्प आरंभ को, अल्प परिक्रम को व्यवसाय में बैठे हैं, फिर भी प्रारब्ध निवृत्ति रूप से चाहते हैं। देखो बहुत गंभीर बात क्या है, हम अल्प आरंभ को, अल्प परिग्रह को व्यवसाय में बैठे, हमारा उस प्रकार का प्रारब्ध निवृत्त हो जाए उस रूप से चाहते हैं। मैंने हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है कि व्यवसाय करते हैं तो अनलिमिटेड हमको कमाई करनी है, व्यापारी को कितनी कमाई करनी है, एक ऑफिस कलकत्ता में, एक मुंबई में और एक दुबई में, कितनी कमाई करनी है कि इसका कोई लिमिट रखी नहीं है, रखिए कोई लिमिट कि इतना आ जाए फिर बंद करने के, ऐसा रखकर किसी को लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। कंपनी का नाम तो लिमिटेड रखते हैं लेकिन कमाई का अभिप्राय अनलिमिटेड का रहता है, उसमें लिमिटेशन नहीं रहता है। देखिए क्या परिस्थिति है, अनलिमिटेड कमाई चाहिए, ये अभिप्राय अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि उसमें जो कर्म बनता है ये बहुत भारी कर्म बनता है, उसको भोगने में बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रखें, यानी हमारी जो जरूरत है उसको कम करें, और जो भी करना पड़ता है तो उस प्रकार के प्रारब्ध को भोग लेने के लिए करना पड़ता है, कमाई करने के लिए नहीं, कर्ज चुकाने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, लोग कुछ लेने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, ज्ञानी अपने प्रारब्ध को देने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, देनदारी चुकाते हैं, लोग लेने के लिए करते हैं, भाई कुछ ये लेना है, वो लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, तो अपना प्रारब्ध को पूरा करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, दोनों का अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए प्रारब्ध की निवृत्ति चाहते हैं, प्रवृत्ति करते करते महत आरंभ और महत परिग्रह, बड़ा आरंभ और बड़ा परिग्रह में हम पढ़ते नहीं है, जाते नहीं है, चाहते भी नहीं है, क्योंकि हम उसको इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आ जाता है तो पूर्व कर्म के हिसाब से आ जाता है, जाता है तो वो पूर्व कर्म के हिसाब से नसीब अनुसार होता है, लेकिन हमारा अभिप्राय कोई अलग है। तो फिर आपको ऐसा वर्तन चाहिए, उसमें कुछ संशय कर्तव्य नहीं है, हम ऐसा चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, उसमें क्या संशय है। वर्तमान में हमारा समाज में होने का योग नियम चौकस रूप से हम समय को लिख सकते नहीं है, लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या लिखना वो शुद्धता भी नहीं है। देखो जैसे विचार आते हैं वैसे ही लिख देते हैं, हमारा समागम आपको कब होगा नहीं लिखा जाता, लेकिन कब होगा इसका कोई विचार विकल्प भी कोई सोचता नहीं है, तो नहीं सोचता है, ऐसा लिख देते, अनिश्चित है, ऐसा करते ये पत्र हुए हैं, बहुत सुपात्र ऐसे मनुष्य जी को उसके आत्मकल्याण के लिए लिखा है। आगे जो पत्र हमको लेना है 548 में 28 साल की उम्र में लिखा हुआ पहला जो प्रभाव 26 साल की उम्र में लिखा हुआ में से लिखा हुआ है। परम स्नेही से पूछा, आपके तीनों पत्र पहुंचे हैं, एक पत्र में दो प्रश्न लिखा था जिसमें से एक का समाधान नीचे लिखा है। तीन पत्र आए थे उसमें एक पत्र में दो प्रश्न भी पूछे थे, एक का समाधान दे रहे हैं। एक का देना दूसरे का नहीं देना, उसमें भी बहुत गहरी दृष्टि से तो प्रत्युत्तर दे देते हैं। ज्ञानी पुरुष का सत्संग होने से और ज्ञानी पुरुष है ऐसा निश्चय पहचान करके होने से और उसके मार्ग को आराधन करने से अनुसरण करने से जीव को दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है या क्षय हो जाता है और अनुक्रम से वो सर्वज्ञानी मैंने केवल ज्ञानी होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करके जीव मुक्त हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। एक वचन पर विचार करें कि अगर कोई भी जीव को ज्ञानी पुरुष का सत्संग मिलता है और उसको निश्चय होता है पहचान करके कि निश्चय से ये ज्ञानी ही है, तो वो उसके कहे हुए मार्ग को दिखाए हुए रास्ता को अनुसरण करने लगता है, विश्वास होता है कि ये जो बात कहते हैं बिल्कुल मेरे आत्मकल्याण के लिए कहते हैं, बहुत फायदा हो रहे हैं, इसका लाभ बहुत बड़ा है। कितना लाभ है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होना। उसको उपशम सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन हुआ उसको, मोक्ष का रिजर्वेशन आरक्षण जिसको कहते हैं, मोक्ष तो अनुक्रम से भविष्य में होगा, लेकिन अभी उसको जो है रिजर्वेशन मिल जाता है। कहां का सिद्धा लेकर नमो लोहे सब सिद्धांत उसी पर रिजर्वेशन होता है। क्या कहते हैं कि उस जीव को दर्शन होने क्षमता है तो उपशम सम्यक दर्शन होता है, अथवा क्षय होने से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है और अनुक्रम माने आगे जाकर के भविष्य में उसको सर्वज्ञान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसका मोक्ष नियम से होता है। ज्ञानी का सत्संग से इतना बड़ा लाभ होता है एक पंक्ति में, अब ऐसा कौन बनिया होगा जो अपने लाभ के पीछे दौड़ेगा नहीं, लाभ के पीछे नहीं जाने वाला बनिया है ही नहीं, और पुरुषार्थ करने वाला क्षत्रिय होता है, पुरुषार्थ तेजी से पुरुषार्थ करने वाला क्षत्रिय होता है। और लाभ के पीछे दौड़ने वाला दुनिया में कितना लाभ बताया। अगर जो समझ में आ जाए अच्छी तरह तो उसके पीछे लगे बिना नहीं, पीछे ही लाभ सब पुरुष को तो सब बंधन तो सब बंधन टूट जाएगा। यह बात प्रकट सत्य है, यह बात कोई कल्पना की नहीं है, यह बात प्रकट सत्य है। जाने अनंत मोक्ष में जाने वाले सिद्ध परमात्मा ऐसे ही सिद्ध हुए हैं, इसलिए वो प्रकट सत्य है। परंतु उससे ऐसा सिद्धांत नहीं होता कि पूर्व में जो भी कर्म बांधे हैं उसको भोगना नहीं पड़े, ऐसा सिद्धांत हो सकता। ज्ञानी को भी कर्म का भोग देना पड़ता, एक ही का खास करके तो भाग भाई अपनों प्रारब्ध के विषय में बहुत उलझन में है, बहुत अपलाश में है। तो आपको क्या, हमको भी भोगना पड़ता है प्रारब्ध को, नसीब को बांधे हुए कर्म को, हमको ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। तो आप मनुष्यों को भोगना पड़े उसमें क्या आश्चर्य की बात है, लेकिन कैसे भोगना, ज्ञानी कैसे भोगते हैं मनुष्य को कैसे भोगना, यह बात समझानी है, इसका उद्देश्य करना है इस पत्र में, इसलिए इस बात को छेड़िए।